यहोशू अध्याय सात। अध्याय सात में हमें पढ़ने को मिलता है, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। यहोशू सात पहला पद। यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा था कि वे जाकर बेतेल और ए नगर का भेद ले आए। जॉर्डन पेत्रा तराई का स्थान है और यरीहो जॉर्डन पेत्रा की तराई में बसा था। यरीहो से बेतेल तथा ए नगर तक बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है। यरीहो समुद्री सतह से 1200 फुट नीचे है और बेतेल समुद्री सतह से 2800 फुट ऊंचा है। यरीहो से बेतेल को जाने वाली घाटी बहुत रमणीय स्थान है। ये मार्ग प्राकृतिक मार्ग है। उन्होंने ए नगर को देकर यहोशू को परामर्श दिया कि ए नगर को जीतने के लिए पूरी सेना की आवश्यकता नहीं है, केवल 2-3 हजार लोग ही उसे जीतने के लिए काफी है। यहोशू ने अपनी सेना से 36 सैनिकों को एक टुकड़ी भेजी, परंतु वे ए के सैनिकों द्वारा खदेड़े गए और मारे गए। वे भागकर शिविर में लौट आए। यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने मुंह के बल भूमि पर गिरा और कहा, हाय, अर्थात हमारा नाश हुआ। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यर्दन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? यहोशू 7:7-10 पद। ये वही स्थिति है जिसमें मूसा परमेश्वर के सन्मुख मुंह के बल गिरा था, जब उसके आगे लाल सागर और पीछे मिस्र की सेना थी तथा भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके देने और बाएं पिहाहीरोत और बाल सपोन थे। मूसा ने परमेश्वर को पुकारा तो उसने कहा, तू मुझे क्यों पुकारता है? मूसा ने कहा कि वो और किसे पुकारे, वही तो उसे वहां तक लाया था। परमेश्वर ने कहा, अब प्रार्थना का समय नहीं है, आगे बढ़। प्रार्थना का एक समय होता है और काम करने का भी एक समय होता है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा उठकर अपना हाथ बढ़ा। यहोशू ने कहा, हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? जब समाचार फैलेगा तब वे सब के सब हम पर टूट पड़ेंगे और हम नाश किए जाएंगे। और वो विलाप करने लगा। परमेश्वर ने उससे कहा, खड़ा हो, तू क्यों विलाप करता है? परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे शिविर में पाप है, इसलिए मैं दूर रहा। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यहोशू 7:11 पर। मेरे विचार में हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है। हम इसे आत्मिक रूपक कह सकते हैं। आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के साथ एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आत्मा जीवन और आचरण। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा तो नहीं की है कि ये जीवन सदा ही विजयी रहेगा। संघर्ष होते रहेंगे, राक्षस आते रहेंगे, क्योंकि आपकी देह बहुत समय से दासत्व में रह चुकी है। उन्होंने पहली बाधा पर विजय पा ली क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आदेशों का बिना प्रश्न पालन किया था। अब इस विजय के कारण एक खतरा उत्पन्न हो गया था और वो ये था कि वे अपने ऊपर भरोसा रखने लगे थे। परमेश्वर, हम तेरी सहायता के बिना ए देश को जीत लेंगे। हमें विजय की रणनीति आ गई है क्योंकि हमने ए देश से भी महानगर यरीहो को जीता है। ए देश का नगर हमारे सामने है ही क्या? परमेश्वर, इस नगर को जीतने में हमें तेरी आवश्यकता नहीं है। यहोशु, तू ऐसा कर कि हमें पूरी सेना मत दे, बस 2000 पुरुष बहुत है और हम उसे जीतकर तेरे कदमों में डाल देंगे। ऐसा ही हम भी करते हैं जब परमेश्वर हमें किसी बहुत विकट परेशानी से निकाल लेता है। तब हम विजय के घमंड से भर जाते हैं और अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, और जब फिर से कोई समस्या आ खड़ी होती है तो हम मुंह के बल गिर पड़ते हैं और तब परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर तब कहता है, अब क्यों रोता है? अब मुझे क्यों पुकारता है? यदि तू पहले ही मेरे पास आ गया होता तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। यदि हम पहले ही परमेश्वर के पास प्रार्थना में आ जाए तो हमारी ये दुर्दशा ना हो और ना ही हम संकट में पड़े। ये हमारे जीवन में भी सच है। यदि हम पहले ही प्रार्थना कर लेते तो परेशानी में ना पड़ते। हम अनेक बार परमेश्वर से पुकार कर कहते हैं, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? परमेश्वर कहता है, तू उस समय कहां था जब तू अपने आप में बड़ा चला जा रहा था? क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू इस परेशानी में फंस? तू तो अपने ही घमंड में फूला नहीं समा रहा था और कह रहा था, प्रभु मैं कर लूंगा, मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बैरी इसी अवस्था की प्रतीक्षा करता है और वो मुझे मार गिराता है। ऐसे आत्मविश्वास से सावधान। सदैव याद रखें कि देह का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसे आप अपने आप में जीत सकते हैं। यदि हमें देह पर विजय पाना है तो हमें परमेश्वर की सहायता लेना ही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक घमंडी मूर्ख बने और कहे कि आपने क्या कमाल किया, और दूसरों को अपने शौर्य का उदाहरण दे देकर फरीसियों की तरह घमंड करें और आप लोगों पर ये प्रभाव डालें कि यदि वे भी आपकी तरह करेंगे तो सफल होंगे। परमेश्वर इसलिए हमें मुंह के बल गिरने देता है कि हम जाने कि हम परमेश्वर के बिना कैसे असहाय और आशाहीन है, और जब हम विजयी हो तो कहें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए ये किया है। मेरे साथ मेरे क्रोध की समस्या थी। मेरी माता मुझसे कहती थी, बेटा अपना क्रोध पर काबू कर। मैंने बहुत कोशिश की और अंत में मैं कुछ समय के लिए सफल भी हुआ। मैं अपना क्रोध पी जाता था, परंतु एक समय ऐसा आया कि मेरा क्रोध रुक नहीं पाया और फट निकला, और तब मुझे बहुत ही बुरा लगा। ओह नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया? एक दिन परमेश्वर ने मेरे क्रोध को उठा लिया। अब मुझे अपने क्रोध को पीने की जरूरत नहीं थी, परंतु मैंने कई साल तक ये नहीं जाना कि परमेश्वर ने मुझे क्रोध से छुटकारा प्रदान कर दिया है। एक दिन ऐसा आया कि कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि मैं आग बबूला हो जाता, परंतु मैंने देखा कि मुझ में क्रोध का नामो निशान नहीं था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे क्रोध से छुटकारा दिला दिया है, या कि स्तुति हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेरे पास अपने क्रोध को अपने वश में करने का नुस्खे नहीं थे। मैंने कोशिशें तो बहुत की थी, परंतु अंत में निराश होकर मैं परमेश्वर को पुकार उठा, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मैं हार गया हूं। हमारे साथ प्रायः यही होता है कि हम थक हार कर परमेश्वर के पास आते हैं, परंतु ऐसी त्रासदीपूर्ण स्थिति आए ही क्यों? ये वास्तव में आपकी विजय का प्रथम चरण है। जब परमेश्वर आपको आपके प्रयासों के अंत में ले आता है और आप पर निराशा छा जाती है, तब आप हार कर हाथ उठा देते हैं। अब परमेश्वर को हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त होता है। वो आपको आपके अहंकार से एक कदम आगे ले जाता है। ये एक महान अवस्था होती है कि आप उसमें प्रवेश करें। परमेश्वर, अब तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अब जब परमेश्वर काम करता है तो मैं उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। आपके महान कार्यों का श्रेय परमेश्वर लेना चाहता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें यरीहो पर विजय प्रदान की तो उन्होंने उसे अपना बड़प्पन समझा और घमंड में भर कर कहा, हम कुछ हजार ही ए नगर को जीत लेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, रो मत, तेरे शिवर में पाप है, इसी कारण ये हुआ है, नहीं तो तुम सफल होते। उन्होंने परमेश्वर द्वारा वर्जित काम किया था। जब गोत्रों को निरीक्षण हेतु इकट्ठा किया गया, तब परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को पकड़ा और तदुपरांत इस परिवार को और फिर इस परिवार में से आकान को जो जेरा वंशी था। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया और जेरा वंशियों के घराने का एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। यहोशू 7:17-18 पद। अब यदि आप आकान हो तो आपको कैसा लगेगा जब सब गोत्र निकल जाए और यहूदा को पुकारा जाए, तब यहूदा के समस्त कुल में से जेरा वंशियों को रोका जाए, तब आपको लगेगा कि आप पकड़े गए। तब जेरा वंशियों का एक एक परिवार देखा जाए और तब आपका परिवार रोका जाए और फिर आपका नंबर आए। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, मुझे यहोशू का ये करुणामय तरीका बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे, यद्यपि उसका व्यवहार कठोर था, उसने उसे पश्चाताप का अवसर दिया। इसराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी तो मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबसे नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। यहोशू 7 19 से 23 पद। मुझे यहोशु का मृदु भाव बहुत अच्छा लगा। वो कठोर भी रहा, परंतु उसने उसे पश्चाताप का अवसर दिया और उसे अपना पुत्र कहा। यरीहो का सारा लूट का माल यहोवा के भंडार में आना था, परंतु आकान बाबुल के उस कीमती वस्त्र को देखकर ललचा गया, क्योंकि उस पर सोने चांदी की कढ़ाई की गई थी। आकान ने उसे चुराकर छिपा दिया। उसने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसका पाप इसराइल को महंगा पड़ा। 62 लोगों की जान गई, वे ए नगर की सेना द्वारा मारे गए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी गलती का हम पर ही प्रभाव पड़ता है। श्रीमान जी, ऐसा नहीं है। आपके पाप का कुप्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। आकान को पाप का दंड दिया गया, उसका पथराव किया गया।